आपने फरमाया कि बर्तनों को साफ करके रखो वरना शैतान उसमें से खाएगा। रात को बर्तन जूठे छोड़ के सोते हैं कि नहीं सोते? अगर पूरे धो के सोते हैं तो साफ है। रिवायतों में बर्तनों में जो खाना पड़ा रह जाता है शैतान उसको आके चाटता है, और फिर वो बर्तन बददुआ देता है उस बंदे को कि तूने मुझे शैतान के लिए छोड़ दिया। अब आप कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, हम कैसे करते हैं? तो वही बात है कि बैक्टीरिया को मनवा लिया और दूसरों को मान लिया तो कर ले। फिर आप देखिए एक और मुझे छोटी सी सुन्नत याद आ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते नमाज वगैरह के लिए सारे काम करके, फजर की अजान जब होती तो दो सुन्नतें अदा करते, और ये सब काम आप अपने घर में करते, क्योंकि नमाजें अगर फर्ज की सूरत में मस्जिदों में पढ़ेंगे तो सुन्नत और नवाफिल घर में पढ़ने चाहिए, वरना हमारे घरों में तो बच्चे तो कह ही देंगे कि अब्बू ने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। हिकमत है ना, बच्चे तो नहीं बताता उनको क्या कहना है, वो कहेंगे अब्बू ने कभी नहीं पढ़ी, हाँ अम्मी पढ़ती हैं। वजह क्या है कि अब्बू मस्जिद में सारी पढ़ते हैं तो सुन्नत और नफिल घर में पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिए कि आप नबी सल्लम जब मस्जिद की तरफ जाते तो क्या पढ़ते, अल्लाहुम्मा अजअल फी कल्बी नूरन व फी बसरी नूरन व समी नूरन, यानी आप कह लीजिए कि सर से लेकर पांव तक के एक एक उज्व के लिए अल्लाह के नबी ने दुआ की कि अल्लाह मेरे मेरी दिल में, मेरी आंखों, मेरे कान, मेरे पट्टे, इनमें नूर भर दे। अब ये नूर भरना क्या है? अल्लाह ताला मुझे अपनी तरफ से रूहानियत दे, मेरे जिस्म की हिफाजत कर दे। आज हम इस दुआ का इख्तमाम नहीं करते, हमारे जिस्म, कान, बाल, हर चीज में तकलीफें शुरू हो जाती हैं, और आप देखते हैं कि इसके बाद हम अपने जिस्म के अंदर एक कमजोरी महसूस करते हैं, और ये कमजोरी बाज दफा फिर हमारी जिंदगी में और बहुत सारी कमजोरियों का जरिया बन जाती है। जब हम वो नहीं करते तो फिर आप देखें हमारे जिस्म से बरकत उठ गई। फिर इसी तरह आप देखिए कि सुबह इशराक के बाद, सोने के बाद जब आप दोबारा उठते हैं चार्ज के लिए, तो दो दो करके चार नफिल पढ़ ले। तो आपने फरमाया कि बदन के जोड़ों का सदका है, ये जो ज्वाइंट पेन है। यानी मैं आपको आज सारी बात के बाद जिस चीज पे लेके जाऊंगी ना, मेरा गोल ये था सुबह, मैं जो सोच रही थी कि अल्लाह करे आज की इस छोटी सी गुफ्तगू से मेरे सारे साथियों में कम अज कम 70-80% लोग ये कहकर उठे आज कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये जितनी बीमारियां आज है, मैं इंशाल्लाह आपको ये प्रूफ करूंगी इसमें अगर आप चाहेंगे और वक्त ने इजाजत दिया, कि आज जितनी भी जिस्मानी बीमारियां हैं, जिसमें आप माइग्रेन कह लें, कैंसर कह लें, सर का दर्द कह लें, इस्तहाजा कह लें, औरतों की जो तकलीफें, ये सब और सब और सब शैतान के असर से है। फर्क समझ लीजिए कि वजह शैतानी असर होता है, असर उसका बदन पे आ जाता है। हम डॉक्टरों को दिखाते हैं जिस्म, देखो वो कहते हैं कोई बीमारी नहीं दिख रही। अमूमन आपने सुना होगा सोर्स नहीं दिख रहा, रीजन नहीं दिख रही, जरासीम नहीं दिख रहे। नॉर्वे में तो ये मशहूर हो चुकी है बात पाकिस्तानियों में कि यहाँ के डॉक्टरों को जरासीम नजर भी नहीं आते और मरीज मर जाता है। तीन तीन चार चार महीने तक मरीज हॉस्पिटल में होते हैं, क्योंकि खतरा बहुत है कि दवाई अलग दे दी तो सू कर देंगे। तो वो बार बार यही कहते हैं आपका बैक्टीरिया नहीं दिख रहा, आपका बैक्टीरिया इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। अखीर बहुत सारे लोग फिर जाके अपने मुल्कों में जाके चेक करवाते हैं कि हमें क्या मर्ज है, इतना हाल खराब है। कभी आपने सोचा, जो भी साथी सीरत से वाकिफ है, नबी सल्लम के दौर में लोग बीमार नहीं होते थे क्या? क्या अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में कोई जिस्मानी बीमारियां नहीं होती होंगी? थी। डॉक्टर कोई क्यों नहीं था? डॉक्टर्स कोई नहीं मिलते मक्का में, मदीना में। मक्का को छोड़ दीजिए, असल तो मदीना से कहानी शुरू होती है। वजह क्या है कि लोगों को जब कोई रीजन समझ आती थी वे फौरन अल्लाह के नबी के पास आते थे। ऐसे वाकयात मौजूद है, सहाबा आके अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी कान में दर्द था, किसी ने कहा अल्लाह के नबी रात को बिच्छू ने काट लिया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सर में दर्द है। चंद वाकयात आपको सुनाती हूँ। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं क्या बताऊं अपने दिल की हालत, कभी आपके बारे में इतनी बदगुमानियां आती हैं कि अल्लाह की बना मुझे आप अच्छे ही नहीं लगते। सोचिए जरा किसके लिए शैतान दिल में डाल रहा है? उस नबी के लिए कि जिससे सारी दुनिया के लोग मोहब्बत करने को बेचैन हो। मुझे अल्लाह के बारे में ख्याल आते हैं, इस्लाम के बारे में आते हैं। अब आप हो तो कि अच्छा फिर तुम पे तो जादू चल गया, तुम पे तो जिन्नात का सेब का साया हो गया। नहीं, आपने कहा कि जब कभी ऐसी सूरत आए तो कहो आमंतु बिल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। फिर आपने उसको सूरह हदीद की इब्तदाई आयात में से कहा पढ़ा करो हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिनु वहुव बिकुल्लि शयइन अलीम, कि अल्लाह अव्वल भी आखिर ज़ाहिर और चीज। सहाबी चले गए, चले आ गए। एक और भी कुछ दिन से मेरी और मैं अपने साथ एक शख्स को, आपने कहा अच्छा कहते आती हैं, कहा जी, कहा इसको कसरत से कहीं गुजरे। वो साहबी वापस आया, कहने लगे भाभी कि अल्लाह के नबी मेरी माँ सब बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन एक बात पे मैं परेशान हूँ, मेरे साथ एक शख्स था जो बड़ी अच्छी पढ़ता था, वो अब मुझे नहीं दिखता। तो आपने फरमाया, अब गौर से सुनिएगा, आपने फरमाया वो जो बहुत अच्छी नमाज पढ़ता था ना, वो शैतान था। वो खुद अच्छी नमाज पढ़कर तुझे वसवसे में डालता था कि तू तो अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, جب تو نے سورت بکرا پڑھی وہ تجھ سے مایوس ہو گیا وہ چلا گیا تیری نماز خود ہی ٹھیک ہو گئی. کیا یہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ. ایک اور صحابی آئے کہا اللہ کے نبی سستی چھائی ہے, کاہلی ہے, گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا, مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا کیا بننا ہے, سونے میں ہاتھ ڈالوں تو مٹی بنتی ہے, قرض خواہ ہو گیا لوگوں کے میرے اوپر اتنے قرضے ہیں, کوئی چیز مجھے اچھی لگتی نہیں ہے کہ میری زندگی میں اچھی ہوگی. اب آپ سوچئے کہ آپ کے پاس کوئی آپ کی دوست آئے اور وہ کہ کیا بتاؤں کچھ دن سے دل کی یہ حالت ہے اور وہ حالت ہے, تو آپ ایک دم کیا کہیں گی؟ ساس زندہ, بس اس کے گناہ بخشوائیں گے آپ, لگتا ہے اس کو جادو کر دیا. اچھا نند بھی ہے, بس پھر تو پکی بات ہے. ہمارا عموماً گمان چلا جاتا ہے, ہم اپنے ایسے پیارے رشتوں کے گناہ معاف کروانے لگ جاتے ہیں. اب آپ سوچئے نا, میں صرف آپ کو سوچ کا فرق دکھانا چاہتی ہوں کہ فرق کیا ہوتا ہے لوگوں کا. ہم فوراً ڈاکٹر پہ چلے جائیں, ہم فوراً اس کا روحانی طور پہ علاج کر لیں, یا ہم کسی اور طرف چلے جائیں, یہ ہمارے اپنے بس میں. اللہ کے نبی نے جب اپنے پیارے ساتھی کی باتیں سنی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ بھی بلکہ میرے ساتھ دہرا لیں, ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے, اور سچ بتائیں کہ آج نمازوں سے سستی نہیں ہے, کاہلی نہیں ہے, کیا ہم پریشان نہیں دکھتے, ہماری اکانومی ڈوبی, مردوں کی جاب چلی گئی, یہی تو مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا, آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اب دیکھیں کتنی خوبصورت دعا آپ نے سکھا دی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے, عجز سے, اور سستی سے, کسل سے, ول جبنی, جبن کہتے ہیں بخیلی کو, یعنی کاوٹنس جس کو انگلش میں آپ کہیں گے, ول حرمی, ول بخلی, یعنی میں کمزور نہ پڑوں, میں سٹنجی نہ ہو جاؤں, اور اللہ مجھے عذاب قبر سے بھی بچا اور زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا. صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی چند دن کے اندر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس وقت ڈاکٹرز ہوتے, اس دور کے موجود اسپیشلسٹ ہوتے, کسی نے کہنا تھا اچھا تمہیں یہ مسئلے ہیں, سائیکٹرسٹ کے پاس جاؤں. اب وہ سائیکٹرسٹ پہ جاتا, پھر وہ اس سے کاؤنسلنگ کرتا, 100-100 pounds گھنٹہ لے کر, وہ آپ سے پہلے تو آپ کے دکھ سنتا, پھر سناؤ, پھر کیا, وہ پوری کہانی جب آپ سنا لیتے دل تو آپ کا ہلکا ویسے ہی ہونا تھا جب کے ساتھ جیب بھی ہلکی ہوئی, پھر آپ نے کہنا تھا کافی پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں, رائٹ. کسی کو بھی آپ اپنی بات سنا لیتے ہیں تو دل تو ہلکا ہو ہی جاتا ہے, پھر وہ آپ کو کچھ ایکسپیرینس سے بتائیں گے, یہ کرو, وہ سوچو, اچھا سوچو, سورج کی روشنی میں بیٹھا کرو, ذرا اندھیرے کو چھوڑو, آپ جی فیل کریں گے. لیکن جب یہ باتیں حدیث میں آتی ہم کہتے ہیں اٹس اوکے, یہ تو حدیث کی دعا ہے, آپ ہمیں کچھ اور بتائیں. آپ پوری مکی اور مدنی زندگی کا دور دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیفیں آتی تھیں, جسموں پہ زخم لگتے تھے, بیماریاں آتی تھیں, وہ جو ہی کسی تکلیف کا شکار ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی ان کو اللہ سے جوڑ دیتے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ اب آگے ہم بات کرنے والے ہیں. آج کے دور کے عاملوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج کا فرق کیا تھا کہ جب دکھی لوگ آپ کے پاس آتے تو آپ ان کو اللہ سے جوڑتے, خود ہی ایسا, جیسے آپ دیکھیں اللہ ہوا, اے میرے اللہ, نبی تو نکل گئے. ہم ہوتے کہتے نہیں پہلے نبی کا پلو پکڑو, پھر ان سے دعا کرو, پھر کیونکہ آخر میرا بھی تو کچھ نام ہو کہ میں نے تمہیں یہ علاج بتایا. آج کیا کرتے ہیں لوگ, اپنے سے جوڑے, پہلے شیخ صاحب, پھر مرید صاحب, پھر ان کی بیعت ہوگی, پھر ان کا پلو پکڑیں گے, پھر نذرانے دیں گے, اللہ تو کہیں دور اور ہم بابا جی کے قریب ہو گئے. آج یہی ہوا. اور یاد رکھیے کہ ایسی تمام چیزوں کا شرعی علاج موجود ہے. قرآن پڑھنے والے اہل علم لوگ جن کو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے محبت ہے, ان کو ان چیزوں کو بھی آگے لانا چاہیے. جب ہم آگے نہیں لاتے نا تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ بےچارے دکھی لوگ, ہر ایک کو تو علم نہیں ہے نا ان باتوں کا, اب جب کوئی تکلیف آتی ہے پھر وہ نکلتے ہیں. بعض دفعہ سنا کیا گیا کہ لوگ نان مسلم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. انڈیا میں عام بات ہے کہ لوگ ہندوؤں کے پاس جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں, کسی کے اوپر اسیب ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم نے نازل کیا اس قرآن میں سے جس میں شفا ہے, موجود ہے, شفاء لما فی الصدور کے لفظ آتے ہیں سورہ یونس میں. تو حقیقت ہے کہ قرآن کی آیتوں کا ایک اثر ہوتا ہے. اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا, اس سے رکھنا اتنا اہم ہے. جب آپ کی زندگی صبح و شام سنتوں سے رہی ہوتی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں, تو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی وظائف کرنے کی. لیکن اگر آپ فرائض کے پابند ہیں اور حرام حلال آپ کی زندگی میں صاف ستھرا ہے, تو واقعی قرآن کی کسی ایک آیت کو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے, اس کا کو اثر ہوگا. जब ये सब नहीं होता तो मसले पर भी चढ़ते हैं। आप कहेंगे अच्छा जी ये सारी बातें तो आपने बताई हैं, ये ऐसी थी कि गोया के साइकोलॉजिकल इशू है। हालांकि आप देखिए कि एक सहाबी नबी सल्लम के पास आए, कहने लगे मुझे बिच्छू ने काट दिया, बिच्छू समझे ना स्कॉर्पियन, उसने काटा, अब मैं क्या करूं। तो आपने कहा कि पानी और नमक लो और उसमें आप हाथ को डाल दो और जाके सूरत फलक पढ़ो। वो कहते मैंने ऐसे किए, मुझे उसका असर खत्म हो गया। इसी तरह एक सहाबा का गिरोह कहीं गया हुआ था, तो वहां जो कबीला था उसके अंदर किसी को चूने काट लिया, उन्होंने इनको बुला लिया कि तुम मजहबी लोग हो, दीन का काम करते हो, तो तुम इसका इलाज करो। ये कहते हैं हमें तो पता ही कोई नहीं था करना क्या, अब कुछ ना समझ आया, मैंने क्या किया सूरत फातिहा पढ़ी और उसके ऊपर फूंक दी। जब सूरत फातिहा पढ़ के फूंकी तो अल्लाह के हुक्म से वो जो जहर था वो खत्म हो गया। उन्होंने आते हुए इनको कुछ तोहफे तहफ भी दे दिए। नबी सल्लम के पास मामला आया, कहा अल्लाह के नबी आज तो बड़ी अजीब ही बात हो गई, ये मामला हो गया। आपने फरमाया तुमने क्या किया था, कहा सूरत फातिहा पढ़ी थी। आपने कहा कि उसमें शिफा है, रुखिया कहते हैं सूरत को, फूकी जाने वाली। उन्होंने कहा अच्छा जो तहाइफ तुम्हें मिले उसमें से हमें भी हिस्सा दो। ये सही वाक्य है। कहने से क्या पता चला कि जब यकीन होता है, डॉक्टर पे यकीन है तो आपको डॉक्टर से ही शिफा मिलेगी। लेकिन याद रखिए कैंसर, यानी मैं जो सुन रही थी मैं हैरान हो गई कि कैंसर फिजिकली क्या होता है, कि कैंसर क्या चीज है, इसका सोर्स कभी आज तक समझ ही नहीं आया। आपने देखा कि आखिरी दिनों में निकलता है ना, पेट में हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता आप सबके मेरे अंदर कितने इसके जरासीम हुए हों, अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन जब आखिरी स्टेज पे वो एक गुच्छा सा बन जाता है और बाकी सेल्स को सब चूसता है तो फिर डॉक्टरों को पता चलता है। वो कहते हैं कि ये कैंसर जो है ये जिस्म के अंदर शैतान के जाने से शुरू होता है। शैतान हमारे जिस्म में किसी तरह घुसता है और हमारे किसी एक सेल को कंट्रोल कर लेता है और उसको चूसना शुरू कर देता है, और होते होते वहां से फिर दूसरों को लेके, और नतीजा क्या होता है कि वो फिर एक ऐसा स्टेज आ चुकी होती है कि डॉक्टर उसको रिकवर नहीं कर सकते। अगर हम पहले से इन चीजों से अपने आप को थोड़ा केयरफुल रखें, शैतानी असरात से बचें, तो अल्लाह ताला हमें बचाएगा। आप कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएं, मैं कहती हूँ बहुत छोटी छोटी बातें। सुबह शाम की दुआएं अगर आप शुरू करते हैं पूरे यकीन और ईमान से, दो दुआएं ऐसी है जिसपे मौत की तरह का यकीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने सुबह के वक्त में आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं उसकी तमाम मखलूकात के शर, तीन दफा पढ़ना है आपने। जब किसी जगह जाएं, किसी के घर जाते हैं आप, मेहमान बनते हैं, आप यहां से उठे बर्मिंघम चले गए, मैनचेस्टर चले गए, अब अगले दिन आए, सुबह आए, जब आपकी गाड़ी रुकी तो आपने कहा कि पढ़ो कि आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, का कोई जिन मखलूक कोई चीज तुम्हें तकलीफ नहीं देगी। इसी तरह एक और दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिहि शैयुन फिल अर्दि वला फिस समाइ वहुवस समीउल अलीम, अल्लाह के उस नाम के साथ जिसके साथ कोई चीज तकलीफ नहीं देती और वो खूब सुनने और जानने वाला है। इसी से मिलता जुलता ही तर्जुमा है ना। जब हम ईमान के साथ ये चीजें पढ़ते हैं हमें सेहत मिलती है। आज कितने लोग हैं जो सुबह उठ के अखबार तो पढ़ते हैं, आगे तो अखबार पढ़ते थे पेपर की सूरत में, अब इंटरनेट से पढ़ लेंगे, खबरें सुन लेंगे टीवी से। कितने लोग हैं जो सुबह उठ के फजर की नमाज का इख्तमाम करते हैं। हदीस में आता है जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ी पूरे दिन के लिए वो अल्लाह की अमान में आ गया। और लफ्ज अमान को अगर आज के आम फहम लफ्ज में कह दो ना तो इंश्योरेंस हो गई उसकी अल्लाह के नाम पर। जाओ सारा दिन तुम्हें कोई मसला पड़ा तो मैं तो इंश्योरेंस पे करूंगा, हदीस में आता है। इसी तरह आता है जिसने रात ईशा की नमाज जमात से और फजर जमात से पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके पूरे दोनों पूरी रात में उसको अपनी हिफाजत में लेता और उसकी इबादत को किफायत करता है। हम इन चीजों पर गौर करें। फिर आप देखिए कि आपको कि शैतान चोरियां भी करवाता है। हजरत अबू हुरैरा की मशहूर कहानी जो आप सुनते हैं आयतुल कुर्सी की तफसीर में, कि तीन रातों तक शैतान उनके पास आता रहा और माल गनीमत का माल चोरी करता रहा। ये उसको पकड़ते थे तो कहता था आज छोड़ दो फिर दूंगा, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये झूठा, ये कल फिर आएगा। आखिरी दिन वो कह गया कि देखो अगर तुम रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो फिर तुम्हें मैं भी नहीं और कोई भी नहीं नुकसान देगा। तो आपने क्या फरमाया, है झूठा बात सच्ची करके गया। क्या मुझे और आपको इस बात का यकीन है? देखिए हम सब सेफ्टी लॉकर ढूंढते हैं, हमें बहुत फिक्र है लॉकर्स में और बैंकों में पैसा और गोल्ड और जेवर और चीजें रखने की। अगर ईमान के साथ हम अल्लाह ताला का नाम लें तो हमारे घर भी उतने ही सिक्योर हैं जितने के बैंक सिक्योर हैं। चोरियां उधर भी हो जाती हैं, इधर भी हो जाती। तो सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर मैं अभी तक पहुंची हूं वो ये है कि जब हम मुसलमानों का अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ मजबूत होता है तो फिर ऐसी चीजें नहीं होती। एक और चीज नजर में आ गई, शहद। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शहद में शिफा है, बस इतनी बात। कुरान में भी उसका जिक्र दो तीन जगह मौजूद है। मुझे आप बताइए कि हम में से कितनों के घरों में शहद उतनी ही कसरत से इस्तेमाल होता है जितनी कसरत से चीनी की पुड़िया खुलती है या चाय का डब्बा खुलता है। हम शहद कहते हैं हाँ बच्चों वाले घरों में होगा, और आप खोल के देखें ना, अमेरिका में तो होता था, इधर का मुझे नहीं पता, शहद की बोतल के ऊपर लिखा होता है कि 2 साल से अंदर के बच्चों को ना दें। और हदीस क्या कहती है कि पैदा होते ही अल्लाह के नबी बच्चे को घुट्टी देते थे, खजूर मैश करके थोड़ी सी उसको चटाते थे या शहद चटवाते थे। अब बताएं कि शहद किस अंदर से हमें मिल रही है? कलवंजी, ब्लैक सीड, उसके अंदर फरमाया कि मौत के अलावा और बीमारियों का उसमें इलाज है, यानी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। चले मैं आपसे ही पूछती हूँ, ना बताएं तो आपकी मर्जी है, आप में से कोई ऐसा घर किसी का कि जिस घर में कोई एंटीबायोटिक ना हो, दवाई एस्प्रीन डिस्प्रीन टाइलनॉल और दवाइयों के नाम पे होता है, कि हम में से कोई कह सकता है कि हमारे घर में कोई दवाई नहीं है? जी, रशीदा के घर पे नहीं है माशाल्लाह, आपके राहा के घर पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके घर पे भी नहीं है ना, और माशाल्लाह आप कितने हैं, आपको पता ही है कि शायद ये नमक में बराबर भी लोगों ने नहीं कहा ना। हमारे घरों में दवाइयां हैं, बच्चों की दवाइयां, सीरप है, मैंने बल्कि बाज लोगों के किचन में देखा है एक पूरी अलमारी दवाइयों की होती है, और खोल के बंद करें तो एकदम नाक में अंदर चढ़ती है स्मेल दवाइयों की। लेकिन क्या हम सब के घरों में ब्लैक सीड और ये है? अगर हमारा कहीं अचार डालने के लिए रखा हुआ वो और बात, लेकिन क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है कि बेहतरीन तरीका इलाज ऐसी चीजों से बचने का कि अगर आप सुबह उठ के नीम गर्म पानी है, आधी चम्मच शहद और उसके ऊपर बिल्कुल एक चुटकी, लोग कहते हैं आधी चम्मच ब्लैक सीड की खाओ, मैं भी सुन रही थी कि एक यानी चम्मच ब्लैक सीड जो वो शायद कितने किलो के फल में से निकलता है, इज सो स्ट्रांग होता है। फिर आप देखिए ब्लैक सीड में मादा भी होता है नर भी होता है, और इसमें स्टरलाइज या वो जिसको आप कहेंगे जिसमें दोनों खसूसियां वो भी हैं, हर एक की अपनी तासीर है, हमारा इसमें इल्म ही कोई नहीं। हम कहते हैं ये तो है बस बात कर दी, कोई और बताओ। आप कहेंगे अच्छा जी ये सब कुछ तो हमारे घर में है फिर भी असर नहीं होता, दुआएं भी पढ़ते हैं कुरान भी पढ़ते हैं शहद भी खाते हैं, तो फिर खुद को चेक करें, कोई ऐसी प्रिवेंशन तो नहीं है मेरे और दुआओं के कबूलियत में? माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं है, कोई हराम माल तो जिस्म पे नहीं है, कोई हमसायों से कटे हुए तो नहीं है, कोई कीना तो नहीं दिल में रखा हुआ, रिश्ते नाते तो नहीं काटे, 3 दिन से ज्यादा किसी खून के रिश्ते से तो नहीं कटे बैठे? सिर्फ ये बात काफी है मेरी और आपकी इबादत जमीन आसमान के बीच में लटकाने के लिए कि हम अपने रिश्तों से कटे रहते हैं। बाद छोटी छोटी बातें नाराजगियों का जरिया है, गीबत करें, मुर्दा भाई का गोश्त खा लें, तो आप बताइए कि क्या हमारी ये चीजें हमें फायदा देंगी? आज भी वही बात है, कुरान में आज भी असर है, हमारी जुबानें बेअसर हो गई हैं। असल बात यह है कि हम पूरा यकीन नहीं रखते। हर रात अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे आके आवाजें लगाते हैं, आपको पता है, जो उनमें से एक आवाज कहती है कोई बीमार जो शिफा लेना चाहे? उसमें अल्लाह ने नहीं कहा कि जिस्मानी बीमार, रूहानी, कल्बी बीमार, कोई बीमारी है, हर बीमारी का इलाज अल्लाह खुद सुबह देता है। और हमारा हाल यह कि मांगने के वक्त आते हैं तो मुंह मोड़ के चले जाते हैं, अल्लाह अकबर। फिर आपको पता है कि आज के दौर में हजारों लाखों रुपया लगा के लोग इलाज करवाते हैं बीमारियों का, ये जो कीमो लगता है जहर का एक इंजेक्शन होता है, किसी जानवर का जहर निकाल के किसी इंसान के जिस्म में लगाया जाना ये कोई छोटी बात है, सारे जिस्म के बाल झड़ जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसी चीजों को अल्लाह के ताल्लुक के साथ रूहानी तरीका इलाज से करने की बात करें, कहते हैं ये तो अब हमारे साथ नहीं हो सकता। ये तो चंद बातें थी, अब इसमें थोड़ी सी बात ऐड करके हम एक और एंगल से बात करेंगे, वो क्या है? नजरेबंद। ये जो हम जादू, चलो जादू किसी पे हो रहा है नहीं हो रहा, शैतान उस पे आए हैं कि नहीं, ये नजरेबंद क्या है और इसके बारे में क्या होता है? तो याद रखिए एक रिवायत है नबी सल्लम की कि मेरी उम्मत की 50% यानी 50% अमवात नजरेबंद की वजह से होती है। ये जो हमें नजर लग जाती है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और हदीस में आता है कलाइनु हक्कुन, नजरेबंद लगना हक है। हदीस में आता है कि अगर तकदीर को कोई चीज बदल सकती है तो वह नजरेबंद है, यानी मौत नहीं आनी थी लेकिन आ गई क्योंकि तुम्हें किसी की बुरी नजर लग गई। फिर इसी तरह एक रिवायत का खुलासा है कि नजरेबंद जवान ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है और सेहतमंद इंसान को बिस्तर पे लगा देती है, माने के ना माने। और इस पे खास तौर पे मैं कहूंगी कि जब अल्लाह आपको मुझे कोई नेमत देता है, मसलन आप देखिए सबसे बड़ी नेमत, आपने भी ये मेरी बात को इंशाल्लाह तस्दीक करेंगे इस बात को, अक्सर लोगों से ये सुना होगा, बच्चा हाफिज बन रहा था, बहुत कुरान पढ़ता था, फिर उसके बाद उसका दिलोचाट हो गया। हाफिज आलिम और खास तौर पे कुरान से जुड़े हुए लोग जब एकदम पीछे हटते हैं ना, उसमें 95% रीजन नजरेबंद होती है। नजर अपने की भी लगती है, प्यार की भी नजर लगती है, हसद की भी लगती है, किसी बुरे की तो लगेगी लगेगी। इस्लाम हमें क्या कहता है कि जो नेमत मिलती है उसके साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी करो और माशाल्लाह भी कहो, बारक अल्लाह भी कहो। अब आप कुरान पढ़ते हैं मदरसों में, यानी मैं किसी आलिम है तो उनकी बात सुन रही थी तो बता रहे थे कि आज हमारे आम मदरसों में तकरीबन कम से कम भी कह दें तो हर साल 20 हाफिज निकलते हैं माशाल्लाह, और उन 20 में से 2-3 के सिवा बाकी सब बदमुआश बन जाते हैं बाद में। और ये तो मैं खुद पर्सनली कई माओं का गम सुन चुकी हूँ कि पहले बड़ा नेक था, अब ये हो गया, कुरान पढ़ा, ये किया, वो। वजह क्या है कि जब हम कुरान के अल्फाज तो पढ़ते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे होते, या फिर वही बात है कि हर तरह से हमारा दिल पाक नहीं होता और नजर लग जाती है। हम उनकी बिस्मिल्लाह करवाते हैं, हम आमीन कराते हैं, सबके बीच में बैठ के मुकाबले कराते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इस्लाम का मिजाज सादगी का है। नेमते हैं ना, अपने लिए इंजॉय करो, दूसरों को ना जलाओ। जब आप शादी के मौके पे 2 लाख का जोड़ा पहनाकर 20,000 का उसको मेकअप करा के कोई 10 लाख का जेवर पहना के एक स्टेज में बिठा देंगे अपनी बेटी को, मुझे बताइए कि जितने लोग देखने वाले हैं वो किस नजर से देखेंगे? मसलन कुछ प्यार की नजर से देखेंगे, प्यार से भी नजरें बद लगती है। कुछ हसद से देखेंगे, हसद करते हैं ना। मसलन कुछ बच्चियां खुद खूबसूरत नहीं है, याद खानदान के वो लोग हैं जिनकी अपनी बच्चियां बैठी हैं अभी और आपकी उससे छोटी बच्ची की शादी हो गई, हसद देखेंगे ना। हो सकते उस महफिल में 4-6 घराने वो भी बैठे हों कि जिन्होंने आपसे उस बच्ची का रिश्ता मांगा था और आपने नहीं दिया, तो वो नजरें बद दगाएंगे। हकीकी वाकयात हैं। एक आलिम थे, वो बता रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा केस लाया गया, वो इलाज करते हैं असल में, नाम भी इकबाल सल्फी उनका नाम है, अगर आपने कभी उनका नाम सुना है तो। मेरे गुमान के मुताबिक कि वो शरीयत के तकाजों में रहते हुए सुनाते हैं और उन्होंने कभी किसी को अपने से नहीं जोड़ा, आलम वास्ता नहीं कभी पड़ा, लेकिन मैं उनके बारे में अच्छा गुमान रखती हूँ। तो वो सुना रहे थे, कहते कि एक दफा हमारे पास एक लड़की लाई गई इलाज के लिए, इतने परेशान है माँ बाप, क्या है जी, 1 महीना हुआ शादी हुए, बिल्कुल अच्छे हालात में शादी हुई है जैसे सबकी होती है, एकदम लड़की बदल गई है, उसका दिल नहीं लग रहा घर में, उसको लड़का अच्छा नहीं लग रहा, और वो कहती है कि मैंने इधर नहीं रहना, मुझे ले जाओ। और घर वालों ने अपने ही गुमान से ये गुमान कर लिया था कि लड़की की जो चच्ची सास है उसने इस पर जादू कर दिया। खैर वो कहते हैं जब हमने उसको देखा तो फिर उन्होंने पूरी अलामतें भी बताई कि जादू क्या है, सहर क्या है, क्या सेब क्या, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और हम कोई इस लेवल पे तो भी सीख भी नहीं रहे। तो उन्होंने बताया कि हमें अपने तजुर्बे से पता चल जाता है कि जब कोई लाया जाता है और हम उससे फिर कुछ चीजें चेक करते हैं, नाखूनों का रंग देखते हैं, खून का रंग, चेहरे के तासरात से पता चलता है कि नजरे बद है या कुछ है। तो कहते हैं कि जब उनका इलाज हमने शुरू किया तो हमें पता चला कि कोई जादू वादू नहीं किसी ने किया, सिर्फ नजरे बद है, और जब नजरे बद का इलाज किया अल्लाह के हुक्म से तो ठीक होगी। और ये उनके लफ्ज थे कि जब 40,000 का लहंगा पहनाओगे, 10,000 का मेकअप कराओगे तो फिर नजरे बद तो लगेगी। आज आप देखिए क्या डिस्प्ले कल्चर नहीं हो गया, हर शादी जो नहीं बस रही ना आज 80% मैं कह सकती हूं कि उसमें नजरे बद का है। ये मत कहें कि सारे आप पे जादू करने के लिए फारिग हो गए, कोई नहीं इतना फारिग है, हम खुद ही काफी हैं। रात जाते जिन आशिक हो जाते हैं, मैं एक ऐसी लड़की को खुद जानती हूँ पर्सनली तौर पर कि वो उसकी शादी की तारीख रखी, तब तक वो बिल्कुल ऐसी और लड़की थी जैसी हम सब आम होते हैं, उधर उसकी डेट शादी की डेट फिक्स हुई, उसकी जुबान बंद हो गई, बोल नहीं पा रही, सुन रही है, देखने में हम बच्ची है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ बोल नहीं पा रही, कर कर के इलाज करा के इधर जाओ डॉक्टरों को, वोकल कार्ड चेक कराए, कुछ नहीं, शादी डिले की। खैर वो किस्सा मुख्य ये कि वो बच्ची की जुबान जब बंद हुई, आखिर जब डॉक्टरों को कोई सोर्स समझ नहीं आया, उन्होंने उनको इसी तरह के रूहानी मौले जो है कुरान सुन्नत से इलाज करते थे उनको बुलाया, और उन्होंने जब उसका इलाज किया, वही लड़की जिसके मैं जब मिलने गई एक मौके पे, हमारे अपने वालिद की दोस्त की बेटी थी वो, तो जब मैं मिलने गई तो उस दिन मैं बोल रही थी और वो कागज पे लिख के मुझे जवाब दे रही थी, यानी वो मेरी बात सुन रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद बात खत्म हो गई, कुछ अरसे के बाद दोबारा ख्याल आया कि पता करें उनका क्या हाल है, फोन किया तो उधर से वही बच्ची बोली और बिल्कुल ठीक आवाज। उन्होंने क्या बताया कि ये बच्ची जब बिल्कुल यंग थी किसी भी जगह तो एक जिन इस पे आशिक हो गया था, वो उसको कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, जो ही उसने इसकी शादी का सुना तो वो ये जेलसी में नहीं सोच रहा था कि इसकी शादी हो, लिहाजा उसने क्या किया कि इसकी आवाज बंद कर दी और उसमें हर्डल डाली और उसका इलाज किया गया और वो बात खत्म हो गई। तो ये सब एक्सपोजर के साथ होता है, जब हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं रखते तो फिर उसका नुकसान तो हो ही जाता है ना। तो इसके लिए इंसान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा फिक्र रखनी चाहिए, कोई भी नेमत मिले किसी को देखे माशाल्लाह के, अब आप कहेंगे जा नजरे बद की बात की है इसका इलाज भी बता दें, क्योंकि ये तो सिंपल है, हम जादू टूने को तो अभी इतनी दूर ना भी जाएं तो नजरे बद का तो हर वक्त कोई शिकार होता है। वाकई सुना देती हूँ, एक सहाबी हजरत साहब नहा रहे थे, बिल्कुल ठीक थे, एकदम तड़पे और पानी में गिर गए। खैर उनके बेटे ने देखा और अल्लाह के नबी को आके बताया कि अल्लाह के नबी मेरे बाप को क्या हुआ है, आपने कहा कि बताओ कि जब ये गुसल कर रहे थे तो कोई पास से गुजरा था, कहा जी अमर बिन रबी गुजरे थे, कहा उनको बुला के लाओ, कहा भी अमर बिन सुनाओ कि तुमने जब इन गुसल करते देखा था तो क्या कहा था, मैंने कहा कि वाह क्या खूबसूरत तुम्हारा जिस्म है, क्या किसी पर्दा नशीन दोशीजा का जिस्म होगा। आपने फरमाया कि तूने अपने भाई को जिबा कर दिया। फिर आपने उमर को कहा कि चल इधर आ वजू कर। फिर उन्होंने वजू किया, आपने उनके वजू के बचे हुए पानी को जमा करके उनको कहा जाके उनके बेटे को सहल के जाके अपने बाप को किससे गुसल करे। जब उन्होंने गुसल किया तो इलाज हो गया। इतना आसान इलाज है जो हम में से बहुत सारों को नहीं पता। समझ लीजिए फायदे की चीज है, बहुत सारी और चीजों में बाद में इसको भूल ना जाए या मिक्सअप ना कर दें। आपको लगता है किसी की नजर लगी है, फर्स्ट थिंग ये है कि किसकी लगी है ये अगर पता हो तो फिर तो सेम यही तरीकाकार है जो ये। मसला ये है हमारे यहाँ के कोई मानता ही नहीं है कि हमारी नजर लगी है, माँ भी नहीं कह मेरी लगी है, अब क्या करें। या बहुत सारे लोग थे, अब आप देखिए अक्सर बच्चे पार्टियों से दावतों से घर आते हैं तो सारी रात रोते नहीं रहते। अब माँ उसके 100 उजर करेगी, सर्दी में निकला था, गर्मी लग गई, ठंड लग गई, नजर लग गई। आप फिर बना के पहना के संवार के इतने खूबसूरत कपड़ों में जब मोतियों जैसे बच्चे लेके जाते हैं तो आप तो दुआएं वगैरह पढ़ के कुछ ना कुछ अपना बैरियर बना लेते हैं। ये मासूम बच्चे तो नहीं बना सकते, इनको असर ज्यादा होता है, मासूम होते हैं जल्दी इनके ऊपर असर होता है। करना क्या है, यानी ये भी एक ऑथेंटिक तरीके से उन्होंने जो बात बताई मौतें मालिक की रिवायत है, जिसके खुलासे से आप ये समझ लीजिए कि कभी आपको शक है, माइग्रेन की वजह भी नजरे बद होती है, सर का दर्द, आधे सर का दर्द, दर्द शकीका, इस तरह के जो बहुत सारे मसाइल है उसके अंदर अमूमन यही वजह होती है। ठीक है, अब उसमें करना क्या है, किसी भी शख्स जो नंबर एक अकीदा ठीक हो, अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, 5 वक्त नमाजी है, अपने गुमान के मुताबिक आपके घरों में आप खुद भी हो सकती हैं कोई और भी है, उसके लिए हुक्म क्या है कि वो वजू करे और जो वजू से पानी नीचे गिरता है ना उसको नीचे किसी तसले में जमा कर ले। इस तरह रिवायत में आता है कि बगलों के नीचे, वैसे तो वजू में हम अंडर आर्म्स पानी नहीं डालते और जिस्म पे नहीं डालते, तो उसमें आता है कि बगलों के नीचे से भी पानी गिरा और अंडर आर्म्स पे भी, यानी गोया कि जिस्म के ऊपर से पानी गुजार के उस पानी को जमा करें और जिसको नजर आए उसको उस पानी से कहें कि गुसल करें। सुनने में आपको कैसा लगे, करने में कैसा लगे, लेकिन अक्सर नुस्खा है कि इससे नजरे बद का इलाज होता है। ये सही रिवायत में, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई मुजरब नुस्खा, फर्क होता है। एक लफ्ज जब बोला जाए ना मसनून अमल है तो आप फौरन पूछें ये सुन्नत में तो किधर है, लेकिन ये जो तरीका इलाज है और इसके कुछ चीजें हैं उसमें मसनून का लफ्ज से ज्यादा मुजरब और इस तरह की बातें कि जो जिसमें कोई शरीयत से टकराव नहीं होता उसके तरीके मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा ने भी किए और इसी तरह के मामलात हैं, तो इस तरह के तरीकों से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इलाज ज्यादा अच्छा होता है। सारी बात का खुलासा क्या है, कुरान और सुन्नत और सुबह शाम की दुआएं, 5 वक्त की नमाज, पेट को हराम लुकमों से बचाना, दिल को गंदी सोचों से बचाना, ये तो वो तरीका इलाज है जो मैं आप हम में से हर एक कर सकता है। कभी आप बैठे में तो एकदम किसी को कोई आपको लगे कि इस पर कोई असर है, होता है ऐसा, कोई बैठ गया, कोई नजरें बदल गई, कोई गिर पड़ा, क्या करें। सबसे पहली बात है कि उससे डरे नहीं, लोग डरने लग जाते हैं, अल्लाह से डर, जिनसे डरना जिनको सर पे चढ़ाना है। अक्सर जिन्नात जो होते हैं ना उनका तरीका वारदात ही क्या होता है, सबसे पहले आपको खुद से डराते हैं, फिर आप अल्लाह अकबर कहें, ऊंची आवाज से अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दें, जो ही आप अल्लाह अकबर कहेंगे ये जिन भाग जाता है, अजान देना शुरू कर दें, वहां अगर कोई बच्चा मौजूद है, कोई मर्द है जिसको अजान देनी आती है, हदीस में आता है कि जब अजान की आवाज आती है तो शैतान जिस्म से हवा खारिज करते हुए भागता है, उसको ये लफ्ज अच्छे ही नहीं लगते। फिर जितना कुरान आता है वो पढ़ना शुरू कर दें, जहां से जो आता है, अगर आती है सूरत फातह बकरा की आयतें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फलक, आयतुल कुर्सी, वो पढ़िए। और याद रखिए कि जिस कलमे से नबी सल्लम का इलाज हुआ क्या उससे हमारा नहीं हो सकता। आप किसी को कह दें ना जादू का, बस आज ही इलाज सीख के आए हैं कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास फलक पढ़ो, कहते ये कोई नई बात आपको सिखाई है, हम तो सोच रहे हैं कोई जंतर मंतर सिखाएंगे, वो भी आपको सिखा देंगे, लेकिन मैं तो इस बात पे ईमान रखती हूं कि जिससे नबी का जादू टूट सकता है फिर उम्मत के लिए क्या नहीं हो। रिवायत में आता है कि जब आप पर जादू नहीं हुआ था तो आप कुछ औराद और ज़ायफ लोगों को सिखाते थे, लेकिन जो ही आपके जादू की वजह से सूरत फलक और नास नाजिल हुई उसके बाद आप हमेशा जादू का इलाज लोगों को कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक से करते थे। इन दो सूरतों को कहते ही हैं मुवज़्ज़तैन, कि दो ऐसी सूरतें जिनके साथ पनाह दी जाती है। फिर इसे सजदे में जाएं, उसे दुआ करें, और इसी तरह से आप देखिए कि मसला भी तो ये ना कि हमें आता भी तो कुछ नहीं है, और कोई आता हो तो ऐसे वक्त में भूल जाता है। हमने खुद एक दफा ऐसा देखा कि एक मदरसे में पढ़ने दौरान एक वक्त हमारी एक साथी थी बच्ची, तो एकदम उसको ऐसे ही लग गया जैसे वो गिर पड़ी और हॉल पढ़ने लगे हैं। अब क्या हुआ, हमारे उस मदरसे में एक हाफिजा सिस्टर भी मौजूद थी और हम सभी थे। अब सारे अपना अपना इलाज शुरू हो गया ना, कुछ तो उससे बातें शुरू करते हैं। कभी ऐसा शख्स जिसके ऊपर आपको शक पड़ के इस पर इस वक्त कोई असर है उससे बातें ना करें, اس کا حال نہ پوچھیں کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں ہوگا، اس کے اوپر اگر کسی کا اثر ہوا ہے تو وہ ہوگا. بلکہ آپ اس کو کیا کریں، سختی سے بات کریں. یعنی میں نے اسے ایسی نرم بات شروع کر دی، کیسی ہے وہ، تو وہ لڑکی قابو میں نہ آئے، ایسے لگے جیسے ہمارے کپڑے پھاڑ دے گی. لیکن وہ جو دوسری ساتھی تھی تو انہوں نے نا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو غصے سے دیکھا، اور بالکل وہی ایکشن ہی بدل گئے، بیٹھ جاؤ خاموش، اور انہوں نے اونچی آواز سے سورہ بقرہ شروع کر دی. یقین کریں تھوڑی دیر وہ بچی تڑپی اور اس کے بعد ایسی گہری نیند سوئی. تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے اڑ کے کہتی مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کچھ ہوا، کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. اسی طرح ایک دعا جو ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ من النار سے کیا مراد ہے؟ آگ. تو جنات سے بنے ہیں، آگ سے بنے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دعا اگر آخرت کی آگ کے لیے نا، تو دنیا میں بھی شیطانوں سے اور جنات سے بچنے کی دعا ہے. پورے یقین سے اگر صبح شام آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائے گا. اور انشاءاللہ اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. تو یہاں ہم رکیں گے. جو بات ہوئی اس میں سے آپ کوئی سوال یا جو بات نہ سمجھ آئی ہو، موسٹ ویلکم، یہ آپ کا وقت ہے. یہ ان کا ایک سوال آیا ہوا، یہ لیتی ہوں. میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نماز میں خشوع ہوتا ہے، تو نماز میں ساتھ شیطان پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کو ذرا واضح کر دے. دیکھیے آپ نے غلط سنا ہے یا میں نے غلط کہا ہے، آپ سب گواہی دے دیں کہ میں نے ایسے نہیں کہا. واقعہ یہ سنایا تھا کہ وہ صحابی کسل مندی فیل کر رہے تھے، لیکن ان کو کوئی انسان دکھا تھا، تو آپ نے بعد میں بتایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں دکھا رہا ہے. آج کے دور میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. پر اب نماز کو نہ اس پہ لیں، کسی اور چیز کو لے لیجئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے آپ درس دے دیں، آپ جا کے کسی کو حق بات بتائیں، کہتے نہیں وہ وہاں تو اتنے اچھے اچھے بات کرنے والے آئے ہوں گے، میں تو کر سکتی. یہ سب شیطان کا اثر ہے. اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لے گا. جی اور کوئی بات؟ جی آپ سسٹر پلیز. جی بالکل، اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا.
اور وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی، پھر جب اٹھی نا تو وہ ان کی آنکھیں بھیگ نہیں گئی، وہ مجھے گھور بہت زیادہ جب میں نے اس کی آنکھیں دیکھی نا، پھر مجھے تھوڑا سا میمری سر ایک اور نہیں کہتی ہوں، کہتی ہیں پیچھے ہٹ رہے نا.
جی جی
اثر ہے، صاف لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی بیمار نہیں ہے، اس کو کچھ اثر ہے.
جی بالکل، ایک دم
پورے پورے میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا، میں نے لا حول ولا قوۃ الا بالله.
جی بالکل، یہ حقیقت ہے، سچ ہے، ایسا ہوتا ہے. جی جی یہ جو بھی واقعہ آپ نے سسٹر بتایا اس سے ملتے جلتے بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ ریئلٹی ہے. ابھی میں نے جو بات کی ہے نا، یہ وہ ہے جو ہم سب عام لوگوں کی ضرورت ہے نا. یہ آخری سوال ہے، اس کا جواب دے کے انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو اس کی نظر سے گزر کر دوسروں کو نظریں بد لگاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے کہ نظر بد کیسے لگتی ہے. آپ کہتے ہیں نا کوئی چیز لگنا، سردی لگی کیونکہ سردی تھی، گرمی لگی تو گرمی تھی نا، تو نظر میں کیا. تو آج اس کو سائنس نے بھی ثابت کیا کہ ہمارے جسم سے ریز نکلتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا الٹرا وائلٹ ریز اور ریڈیشن، تو ہر بندے کے اندر سے ریز نکلتی ہیں. اگر میں خود بولتے ہوئے اگر ادھر اپنا ہاتھ رکھوں نا تو میرے منہ کے اندر سے گرمی نکل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی جو یہ اثرات ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں، بلکہ اسی کی روشنی میں میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں کہ سحر کیا چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی آپ کے ہاتھ پہ مارتا ہے، جیسے اگر آپ دیکھیں آپ میرے ہاتھ پہ ماریں تو مجھے ہاتھ کو درد ہوگی نا، جس طرح اس ہاتھ کو مارنے کا ہاتھ پہ اس کو درد ہو رہی نا، کیونکہ یہ بھی مادی چیز ہے یہ بھی مادی ہے، اسی طرح ہماری روح جو غیر مادی چیز ہے اس کو الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ مثلا آپ بیٹھے اور ایک دم آپ کو کوئی کہ بہت ہوشیار ہیں آپ، آپ کو گالی دے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، ہماری روح پر الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ جادو، سحر، نظر باد، آسیب، جو کچھ بھی ہے نا افیکٹ، یہ ہماری روح پہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ روح جسم میں گندی ہوئی ہے نا تو جسم اس کو فیل کرتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ ریزن نہیں سمجھ آ رہی، بیماری روح میں ہوتی ہے اور جسم پہ ہوتی نہیں، علاج روح کا کر دیں گے جسم ٹھیک ہوگا،